జయ శ్రీ ఓం నమ సిద్ధేభ్య నమో అహంకారం నమో సిద్ధారం నమో ఆయుర్యాళం నమో వజ్రాయాళం నమో లోయే సవ్వతాహూణం నమ సమయకారాయ స్వానుభూత్యా చకాసతే చిత్స్వభావాయ భావాయ సర్వభావాంతరచ్ఛదే అనంతధర్మణస్తత్వం పశ్యంతి ప్రత్యగాత్మనః అనేకాంతమయీ మూర్తి నిత్యమేవ ప్రకాశతాం వందిత్తు సర్వసిద్ధే ధూమచలమణోవమంగళిం పత్తే వోత్సాం సమయ పావడ నిర్మోసు కేవలీ భంగం. మోనా ద్వారా ఆయోజిత ये विद्वत गोष्ठी और आध्यात्मिक शिविर का अष्टानी का पर्व का प्रथम दिवस समाप्ति की ओर है. सुबह से ही अपन सत्य चर्चा और गंभीर चर्चा के रंग में रंगे हुए हैं. मुझे सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार की प्रारंभिक गाथाओं पर चर्चा करने का निर्देश हुआ है, वही चर्चा अपन आगे बढ़ाएंगे. यहाँ पर प्रतिदिन जो स्वाध्याय होता है उसमें सायंकालीन सभा में समय सार ग्रंथ राज का स्वाध्याय दूसरी बार दोनों टीकाओं के साथ में लगभग मेरे ख्याल से 2.5-3 वर्षों से चल रहा है. मोक्ष अधिकार की 299 गाथा तक धारावाही एक एक पंक्ति पंक्ति के आधार से अपनी शक्ति अनुसार मंथन हो चुका है. कुछ गाथाएं बाकी रह गई हैं मोक्ष अधिकार की, उनकी चर्चा अष्टानी का एक बार आगे बढ़ाएंगे. वो विषय कंटिन्यू हो जाएगा क्योंकि ये प्रकरण यहाँ सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार का है. बाबूजी के लिए ये शिविर समर्पित है, इससे वास्तव में शिविर का ही गौरव बढ़ा है क्योंकि हमने प्रत्यक्ष देखा है जिस कार्यक्रम में बाबूजी की उपस्थिति रहती थी तो आत्मा में ज्ञान की भांति उस कार्यक्रम में बाबूजी ही आद्योपांत उन्हीं की झलक उन्हीं की समझ लीजिए प्रभाव व्याप्त रहता था. जैसा इस सुबह मैंने थोड़ा सा संकेत किया, किसी भी विद्वान का मूल्यांकन यद्यपि लौकिक जगत में उसके बाह्य वर्तन और व्यवहार से होता है और उस कसौटी पर भी बाबूजी पूरी तरह खड़े उतरते. प्रकाश भाई ने जो एक प्रकरण सुनाया था कोटा के फोटो कांड का, मैं उसका प्रत्यक्ष दर्शी रहा. सोनगढ़ से जो टीम गई थी कोटा उसमें मैं भी शामिल था. सचिव भाई थे, हीरा लाल जी थे, बाबू भाई थे और मैं था, चार लोग थे. जो हुआ वो सब आप सबको भाई ने बता दिया है. मुझे केवल इतना कहना है कि एक आत्मार्थी, उत्कृष्ट आत्मार्थी कहें या ज्ञानी कहें, उसका जीवन व्यवहार में जो साधर्मी वात्सल्य और विवेक की अपेक्षा चरणानियों रखता है, उस कसौटी पर भी बाबूजी पूर्णतया खड़े उतरते। यद्यपि मात्र बाह्य व्यवहार से विद्वान का मूल्यांकन करना ये न्याय संगत नहीं। किसी डॉक्टर के बारे में इससे मूल्यांकन किया जाए कि उसका कितना बड़ा हॉस्पिटल है, कितने बड़े उसकी कोठी है, कितनी महंगी उसकी कार है, या कितना महंगा उसका फीस है, बोलते जाएगी ये कोई डॉक्टर की कसौटी तो नहीं है, लेकिन एक लौकिक दृष्टि से इन बातों का प्रभाव जरूर होता है। अभी भी समुद्र भद्राचार्य ने तो आपकी कसौटी में तीर्थंकर प्रकृति से भी इनकार हो गए कि आप तीर्थंकर हो, देव आते हैं समूह शरण में और आप आकाश गमन करते हो, इसलिए आप महान हो, ऐसा हम नहीं मानते हैं। तो भी चोरमल जी साहब लिखते हैं कि लोक में बाह्य प्रभुत्व स्थापित करने के कारण भूत अनेक अतिशय उत्पन्न होते हैं। तो जनता तो जनता के हिसाब से चलती है। कहने का आशय ये है कि तत्व ज्ञान की सूक्ष्मता और प्रस्तुतिकरण में स्पष्टता, और यदि आज आप लोगों ने ध्यान से उनका प्रवचन सुना हो तो संतुलन बैलेंस ये उनके चिंतन की आदर्श विशेषताएं हैं। हम सबको जो भी स्वाध्याय के द्वारा जिनागम में अवगाहन करके उस शुद्ध तत्व को उपलब्ध करना चाहते हैं, उन्हें बाबूजी के चिंतन से निरंतर प्रेरणा लेना चाहिए। उन्होंने देखिए कितने स्पष्ट कहा आज कि वो स्वभाव संसार का कारण नहीं है, बल्कि उसमें अपना मानना, अपने को उसका कर्ता मानना, उसमें उपाधि बुद्धि होना, वो संसार का कारण। तो उन्होंने मूल वजन अभिप्राय पर ही दिया। सुबह भाव की तो क्या हस्ती है, क्या कीमत। इसी तरह से पर्याय को गौण करते हुए भी वो तो रहेगी, उसे हटाना नहीं है, उसे हटाया जा भी नहीं सकता है, लेकिन वो जैसा उसका स्वरूप है वैसा जानकर उसके साथ में व्यवहार करो। व्यवहार करो माने अनित्य को अनित्य जानो, बात खत्म, फाइल क्लोज, क्या करो। इस तरह पर्याय के बारे में, व्यवहार के बारे में मैंने तो बीच में धारावाही रूप से पता नहीं यहाँ वो चिन्हय आएंगे सीडी लाएंगे कि नहीं, वो 594 प्रवचनों की एक सीडी है ऑडियो बाबूजी के प्रवचनों की, तो उसमें बहुत से विषयों पर है चर्चा, सैकड़ों कई सौ तो मैं सुन चुका हूँ, प्रत्यक्ष भी सुना है। तो हमेशा जब वो उनके एजेंडे पर व्यवहारिक बातें रहती हैं तो इतनी ज्यादा वो समझ लो उस पर जोर देते हैं कि सुनने वाले घबरा जाते हैं। इसी देवलाली की एक घटना है, यहाँ प्रशिक्षण शिविर था, नया नया ही देवलाली का उद्गम हुआ था और प्रशिक्षण शिविर में बाबूजी विद्यमान थे। कोई समय साल की 15वीं गाथा या 21 की कोई गाथा लेने की घोषणा और संकल्प उन्होंने किया, प्रचारित हो गया। सुनने वाले तो बेचारे उसी मानस से ही आते थे, अब उनके चिंतन में आ गया निष्क्रियाभास, और वो 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, वो निष्क्रियाभास की ही समझ को जो है घुटाई होती रही। पहले जो निर्णय करो कि पर्याय में विकार है कि नहीं, वो तुम्हारी भूल से तुमने किया है कि नहीं, पहले ये निर्णय हो जाए फिर आगे बढ़ूंगा। यानी जो गुरुदेव की शैली थी कि अगर जिनागम के प्रकरण में राग का कर्ता आत्मा को लिखा है तो नियम सार के प्रश्न में गुरुदेव ने ये कहा कि जो अपने को राज का कर्ता नहीं मानता उसको दृष्टि का विषय हाथ में नहीं आता। बोलो आप, इसलिए हम लोगों की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस तरह के जो भी कथन चाहे जनागम में हो, गुरुदेव के व्याख्यानों में हो, बाबूजी के लेखों में हो, तो ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे उसका व्यू क्लियर हो, उसकी अपेक्षा, उसका भाव, वो जितना अधिक स्पष्ट होगा श्रोताओं की भ्रांति की संभावना उतनी क्षीण होगी, कम होगी। कोई कोई बात ऐसी आ जाती कहाँ तो अवध स्पष्ट आत्मा, उसकी श्रद्धा करना है। प्रसाद सिद्धू भाई को कहता है कि ये कर्मकृत भाव है, जीव से असंयुक्त है और फिर भी जीव में है ऐसा भाषित होना प्रतिभाति बालिका नाम सखलु भाव भी है। ऐसा अज्ञानियों को आत्मा में राग है ऐसा भाषित होता है ये संसार बता है। तो इस तरह अलग अलग अपेक्षाओं से जिनागम में भी भिन्न भिन्न प्रकार के कथन हैं। अपन सबकी ये जिम्मेदारी है कि मूल प्रयोजन जो अपना स्वभाव में अहम, वास्तव में ये शब्द बोलने में भी थोड़ा जीव को तकलीफ होती है क्योंकि भेद का व्यवहार खड़ा हो जाता है और अपन तो इतने अभेद प्रेमी हैं कि भेद का नाम भी आ जाए तो ऐसा लगता है कोई पाकिस्तान का आतंकवादी आ गया हो। इसलिए ज्ञान में संतुलन और दृष्टि में तो एक स्वभाव मात्र। बाबूजी से जो अमर वाक्य है, अमर वाक्य है लवि होली अपमत्तो न पमत्तो की भांति, सम्यक दर्शन ने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन के लिए ही जगह नहीं है, है? ये जो परिणति में जो अभेद वृत्ति खड़ी होती है उसका इतना सफल और गहरा चित्रण परिणति की अभेदता। अभी बहुत बढ़िया बात आई कि पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करे, उसमें डूब जाए, ये सब कहने की भाषा है, डूबती भूखती तो कुछ नहीं है। अपने को वैसा अनुभव करे ये उसकी सत्समय की स्वतंत्र योग्यता। ये दान या ये कृपा द्रव्य स्वभाव ने पर्याय पर नहीं की। अब उन्हें निश्चित है वो क्या कृपा करेगा, वो क्या अकृपा करेगा। वो तो जो निश्चित ध्रुव तत्व है निश्चय पारणाम का, जिसमें कोई दृष्टि ही नहीं। सौगानी जी के शब्दों में कहें ऐसे सौगानी जी के बारे में भी रखो रजनी भाई है? उनके शब्दों में कहें मात्र पिंड हूँ वृत्ति नहीं। तो एक सरकारी शुद्ध चैतन्य को मुख करके जो बात कही जाए तो उसमें से पर्याय उसमें से आई के उसने प्रणमन किया इत्यादि इत्यादि ये सब बातें बहुत कमजोर मालूम पड़ती है, ठीक ही लगती है। जिस जब प्रणति की अमेरिका की बात करें तब वैसी भी आप था और जैसा भी आज तो वैसे बाबू जी के प्रवचन में आप सबने ध्यान दिया होगा कितने सुंदर तर्क और युक्तियों से उन्होंने जो सरकारी द्रव्य स्वभाव है उसे पर्याय से भिन्न साबित किया है। दो विरुद्ध ये तर्क मुझे बहुत अच्छा लगा, जब दोनों के विरुद्ध धर्म है विरुद्ध स्वभाव है तो वो मिल कैसे सकते। अगर द्रव्य और पर्याय दोनों अंश मिल जाए तो दो नहीं रहेंगे, तो फिर धर्मार्थी और अधर्मार्थी क्यों नहीं मिल सकते, तो जड़ और चेतन क्यों नहीं मिल सकते। जब द्रव्य और नित्य और अनित्य मिल सकते हैं, शुद्ध और अशुद्ध मिल सकते हैं, मिल सकते हैं माने दोनों अपना सत्व खोकर के एक हो सकते मिलने का ये। उनने ये भी कहा कि एक वस्तु के अवयव हैं, त्रिवेदी अब देखिए कितना संतुलन, एक वस्तु के अवयव है जो भिन्न भिन्न सत्ता नहीं है। हमारे शरीर में दो आंखें हैं, ये शरीर के ही इसी शरीर के अंग है, इसी शरीर को संतुलित ढंग से देखने के काम में दोनों आंखें आती हैं। लेकिन जिस आंख में मोती या बिंदु ऑपरेशन उसी का होता है, तो दूसरी आंख में नहीं होता है, है जहाँ पे घाव होता है कोड़ा होता है ऑपरेशन वही होता है, दूसरे अंग का जिस पैर की हड्डी टूटी हो जिस नंबर के दांत में समझ लो कीड़े लगे हो या हिल रहा हो वही नंबर का निकाला जाएगा, गलती से डॉक्टर दूसरा निकाल ले तो और तकलीफ हो जाए। यानी एक एक शरीर के अवयव होने पर भी प्रत्येक अवयव का अपना स्वरूप और तत्व भी सुरक्षित है, ऐसी अनुभव निधियाँ हैं हम सबका। सचमुच में देखा जाए तो चक्रवर्ती से भी ज्यादा तो क्या कहें, इतने बड़े महापुरुष के लिए ये बात कहना ठीक नहीं है तो उनसे भी ज्यादा, लेकिन उनसे कम भी नहीं, क्योंकि ये निधि जो है बाबू जी की देखने के माध्यम से, गुरुदेव के व्याख्यानों के माध्यम से और भी जो समय सार अनुशीलन वगैरह डेवलप हुए हैं उन सबके माध्यम से ये जो निधि हमारे पास है, हमारी पीढ़ी को मिली है, ये बहुत बड़े गौरव की बात। भाव तो बहुत होते हैं, जितना कहा जाए उतना कम है, फिर भी कहीं जब जो कुछ चर्चा आएगी तो अपन उसका आनंद लेंगे, कंजूसी नहीं करेंगे उसमें। बाबू जी के बारे में कोई भी प्रसंग आएगा, कोई भी बात आएगी तो यथा समय उसकी भी चर्चा अपन करेंगे। जैसे कि यहाँ स्वाध्याय की शैली है 193 कलश मैं पढ़ूंगा, आप सब रिपीट करेंगे क्योंकि पंक्ति फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ये शुरू करने के पहले एक मार्मिक बात और मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ। लगता है दिल्ली का पोल्यूशन देवलाली में ही आ गया है। समय सार की विषय वस्तु को मैं एक त्रिकोण दृष्टि से देखता हूँ। इसका जन्म तो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाने के लिए हुआ है, और जिन्हें देखना है उनकी वर्तमान दशा क्या है, और जिन्हें देख लिया है उनकी दशा कैसी दृष्टि कैसी होगी, तीन बातें हैं। कौन कौन सी? एकत्व विभक्त आत्मा कहो या शुद्ध आत्मा कहो, त्रिकाली ध्रुव, उसके लिए तो कारण परमात्मा शब्द प्रसिद्ध है, लेकिन अभी भाई ने अकारण परमात्मा बोला तो मुझे ये विचार आया कि वास्तव में कारण परमात्मा कहना ये उच्चरित कथन है ये सापेक्ष है, ये पर्याय का स्वर है। जैसे शिष्य गुरु की ओर देख करके हाथ जोड़ के चरण स्पर्श कर गए, गुरु जी आपके आशीर्वाद से आपकी कृपा से ऐसा हुआ ऐसा हुआ मुझे मेरी निधि मिली इत्यादि इत्यादि, वो असद्भुत व्यवहार है। और पर्याय द्रव्य सन्मुख होकर के कहे कि ये कारण है, तो गुरुदेव याद दिलाते ना बार बार, उनसे पूछा गया था ना है बादल, बादल का नाम लेते किसका लेते बारिया, क्या कारण परमात्मा कहते, कारण परमात्मा कह रहे कारण क्यों नहीं होता भाई, कारण है ऐसा तुमने स्वीकार किया। ये देखो गुरुदेव का स्वानुभूति परक जवाब, स्वीकार हो तो कार्य प्रकट हो ना, तो कारण कहना ये पर्याय की तरफ से कथन है, पर अकारण कहना भी समझ लीजिए इसमें नास्ति की बात आ जाती है। लेकिन स्वभाव से न किसी का कार्य है न किसी का कारण, अकार्य कारणत्व शक्ति। तो एकत्व विभक्त आत्मा अगर कोई वक्ता उसे कारण परमात्मा कहे तो भी आप उसका उस अपेक्षा को समझे, और कोई अकारण परमात्मा कहे तो भी आप उस अपेक्षा को समझे है। तो इसमें हेतु दिया था बहुत बढ़िया न्याय की भाषा में। अगर ब्रज को ही कारण माना जाए तो नित्य कर्तृत्व का दोष आता है। इस भाषा का प्रयोग चौबी भाषा में है, निमित्त के प्रसंग में चौबी भाषा में की कर नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आए। यदि आत्मा निमित्त निमित्त भाव से भी पर को करे तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आए। तो इस तरह एक व्यायत भाव को दिखाया, समय काल का जन्म ही इसलिए हुआ, और उस व्यायत भाव को दिखाने के प्रसंग में जिसने नहीं देखा है उसकी दृष्टि कैसी है, यानी अज्ञानी का क्या स्वरूप है ये बताया, और जिन्होंने देख लिया ऐसे ज्ञानी की दृष्टि कैसी हो जाती है, यानी मिथ्या दर्शन का स्वरूप भी है और सम्यक दर्शन का स्वरूप भी। तो ये तीन त्रिकोण जो है, तीन बिंदु, इन पर समय काल का महल खड़ा हुआ है। मैंने आज 308 से 320 गाथा जो मुझे सौंपी गई है थोड़ा सा उनका पारायण किया, विहंगम अवलोकन। तो उसमें मुझे तीनों बातें दिखाई पड़ी। प्रारंभ की ये जो गाथाएं हैं 308 से 311, इसमें तो प्रतिज्ञा ही की है आत्मा का अकर्तृत्व दृष्टांत पूर्वक कहते। देखो कर्ता कर्म के कारण भी आचार्य देव आत्मा का अकर्ता स्वभाव बता आए हैं, पर ऐसा लगता है कि उनका मन भरा नहीं। उस समय उन्हें ऐसा लगा होगा कि अगर अपन इन गाथाओं को कर्ता कर्म अधिकार के बाद जोड़ दे रहे 308 नंबर को 145 नंबर पर रख दे रहे 145 कर्ता कर्म अधिकार 144 अंत है वो तो 145 नंबर पर रख दें और पूरी 108 वहां लिख दें तो ये कोई क्रम भंग हो गया है ऐसा नहीं लगेगा। लेकिन आचार्य देव को ऐसा लगा कि अति विस्तार हो जाएगा, इसलिए जो विषय जिस ढंग से चल रहा है ऐसा चलने दो। लेखकों का मनोविज्ञान थोड़ा बहुत आइडिया अपने को भी लगता है कितना सोचते हैं और कितना लिख पाते। तो लेकिन जब पूरे हो गए मोक्ष अधिकार, ये भी स्वांग है, और सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में द्वंद और मोक्ष के स्वांग से रहे शुद्ध चैतन्य तत्व जो है वो दिखाते हुए उन्होंने फिर से आत्मा के अकर्ता स्वभाव की चर्चा की। और जो एकांत से अकर्ता मानते हैं उनकी भी अच्छी तरह से खबर ली। सांख्य मतानी आई जो अभिप्राय वाले हैं उन्हें उन्होंने वार्निंग दी कि एकांत से अकर्ता मानोगे तो श्रुति देवी जिनवाणी माता नाराज हो जाएगी, तुम्हें उसका कोप सहन करना पड़ेगा। इसलिए जैसा सांख्य मत में आत्मा सर्व पुरुष सर्वथा अकर्ता है वैसा मत मानना, ऐसा है। ये सब गाथाएं और जिन साथियों के डिपार्टमेंट पे हैं वो लेंगे, अपन तो पूरा करने वाले हैं साल भर। और स्पष्ट घोषणा की है कि अज्ञान दशा में ये जीव रागादि भावों का करता है, वेद ज्ञान होने पर अकर्ता होता है श्रद्धा की अपेक्षा, और केवल ज्ञान होने पर साथ साथ अकर्ता है। ऐसे तीन बोल है सांख्य मत वाली गाथाओं। तो ये पूरी झलक जो है ये तीनों बिंदुओं की, सद्भाग्य से इन 308 से 320 गाथाओं में भी एक बात आ गई। आत्मा का कर्ता स्वभाव आया, अज्ञानी कर्ता और भोक्ता अपने को मानते हैं इस मान्यता का भी उल्लेख है, और ज्ञानी अपने को कर्ता भोक्ता नहीं मानते हैं इसका भी उल्लेख है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये लजीम भाई ने सोच के तो नहीं दिया होगा, हमने तो गिनती के हिसाब से दिया होगा कि पहले की 308 से 320 गाथाएं इनसे चर्चा आपको करनी है। बहुत सुंदर प्रचरण है, मैं कलश पढ़ता हूँ, आप सब रिपीट करेंगे। शुरुआत में मैं ये टीका साथ में लूंगा एक दो दिन, और फिर समय के हिसाब से देखूंगा तो मूल गाथाओं के हिसाब से वो 320 तक की चर्चा बन पूरी करेंगे। राकेश जी ने तो कलश के ऊपर काफी विस्तार से चर्चा कर ली है दोपहर में, इसलिए अपन अभी संक्षेप में बात करेंगे। नीत्वा सम्यक् प्रलयमखिलान् कर्तृभोक्त्राभिभावान् दूरीभूत प्रतिपदमयं बन्धमोक्ष प्रकृते शुद्ध शुद्ध स्वरस विसरा पूर्ण पुण्या चलाची संकोचीर्ण प्रकट महिमा पूजति ज्ञान पुण्य इसका अनुवाद 9 पेज पर है, जो छोटी पुस्तक है उसमें 9 पेज पर। करता भोक्ता भावों का जो भले प्रकार विनाश करे मोक्ष की रचना से कदम कदम पर दूर रहे शुद्ध शुद्ध जो निर्मल जगत से भूर प्रताप संकोचीर्ण प्रगट महिमा ज्ञान पुंज प्रगट भरपूर शब्द है थोड़ा एक थोड़ी विचित्र बात है कि जितने भी स्वांग वाले प्रकरण हैं जीव जीव भी हैं तो दो भिन्न भिन्न एक होकर के प्रवेश करते हैं रंगमंच पे, और जब ज्ञान जान लेकर के आई तो एक दिखरे नहीं है जुड़े जुड़े, तो जैसे बहुरूपिया जो है उसको कोई पहचान ले तो फिर वो अपना स्वांग सो देता है, फिर वो अस्पताल से आ जाता है फिर उसकी जो असली जो सरवरे ऐसा हुआ था। ये मेरी दुकान पे एक इंस्पेक्टर बन करके आ गया, उस जो जमाना था इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो बहुत वो आंदोलन चल रहे थे क्या बोलते इंक्रोचमेंट हटाने के, तो टीम आई थी गवर्नमेंट की इंस्पेक्शन के लिए रमेश भाई, तो उनके समझ लो आधा घंटे पहले वो आ गए रहो ये सब ऐसा ऐसा, अब उसके हाव भाव देख के मुझे समझ गया कि नकली आदमी। मैंने टेलीफोन उठाया और ऐसे नकली फोन किया पुलिस को तो उसको ये बताया कि मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ, देखो वो आ गए मेहमान आप आइए उन्हें ले जाइए। अरे बाबू जी हम तो आप ही का दिया हुआ खाते हैं, आप 5 रुपया दे दो जो नकली स्वांग धारण करते हैं वो कोशिश करते हैं कि लोग मुझे असली समझें, इसी में उन स्वांग धरने वालों की सफलता है। और जो ज्ञानी होते हैं वो उसकी असलियत जान लेते हैं तो अपने असली स्वरूप में आ जाता है। इसी शैली में आचार्य देव ने पूरे 9 अधिकार लिखे, कर्ता कर्म अधिकार में भी जीव और अजीव कर्तिक कर्म देखे कर्ता कर्म का भी एक कर्ता बन गया एक कर्म बन गया, समझ में आया। फिर पुण्य पाप आ गए, फिर आश्रव आ गया, फिर संबर आ गया, फिर निंद्रा आ गई, फिर बंध आ गया, मोक्ष आ गया। और सर्वशुद्ध ज्ञान ये कोई स्वांग तो नहीं है ना, तो ये रंगमंच पर प्रवेश किया ये कोई स्वांग ने कोई नया एक्टर आया हो ऐसा नहीं है। ये तो वास्तव में स्वभाव उदित हुआ। वो जो प्रारंभ में आचार्य देव ने कहा था, नौ तत्व गतत्वेति यदि तत्वम न मुंचति, नौ तत्व में परिणमित होता है, ये एक पक्ष है, परंतु स्वभाव से देखा जाए तो वह एकत्व स्वरूप ही रहता है। फिर ये सर्वशुद्ध प्रविशति सर्वविशुद्ध ज्ञानम, आप इस बात का ध्यान रखना बराबर पूरे अधिकार में कि सर्वविशुद्ध ज्ञान की चर्चा करना है, और फिर वो पर का कर्ता नहीं है, रात का कर्ता नहीं है, अकर्ता स्वभाव ही है, ये बताना यानी कर्तृत्व की वासना, ये ज्ञान का महा अपराध है जो अज्ञान कहलाता है। और कर्तृत्व का विकल्प वासना निकल जाए, जैसे कि अभी चर्चा में ये बात आई कि आपको सम्यक दर्शन की डिमांड है, सम्यक तुमने देव नित अनंत चाहूँ, सिद्ध का सुमरण करूँ, सोलह कारण चाहूँ, रत्नत्रय चाहूँ, है ना, तो अपने उसमें आराधना पाठ में है, वो व्यवहारिक धरातल पर वो ही प्रशंसनीय बात है कि आप पांच इंद्रिय विषय नहीं चाहते, आप संयम चाहते हैं, रत्नत्रय चाहते हैं, व्यवहारिक धरातल की बात है, स्थूल कथन है। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो आपको सम्यक दर्शन की मांग है, यानी आप अपने को मानते क्या, हम तो व्यायस हैं, बहुत बढ़िया बात है, तो अभी भी तुम्हें सम्यक दर्शन चाहिए है, अपने को व्यायस देखते हो तो अभी भी सम्यक दर्शन की डिमांड खड़ी है, तुम्हें न तो सम्यक दर्शन का स्वरूप का पता है और न व्यायस के स्वरूप का पता है। तो ये सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में, ज्ञान में अगर मांग खड़ी हो गई, ज्ञान में अगर कर्तृत्व का भले निर्मल पर्याय सही, अरे निर्मल पर्याय का कर्तृत्व भी निर्मल नहीं है, क्या बोला, निर्मल पर्याय का कर्तृत्व भी मिथ्यात्व है, परिणमता है, निर्मल पर्याय रूप द्रव्य परिणमता है, ये उसका स्वभाव है, परिणमन स्वभाव है, वो बात जुड़ी, पर मुझे ये पर्याय करनी है, ये वासना जो है ये सूक्ष्म मिथ्या, छुपा हुआ गद्दार, समझ के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से आता है ना, है, तो ये ज्ञान का अकर्तत्व तो दिखाना है मूल प्रयोजन। ये दुआ आज सुबह गुरुदेव के व्याख्यान में अपन ने पढ़ा था, पढ़ते अपन सब मिलके इसको व्याख्यान में सुना था, सर्व विशुद्ध सुज्ञान मैं सदा आत्मा राम, पर तू करे न भोग वे जाने जपित सुनाम। सुबह का गुरुदेव का व्याख्यान, कल भी वो धारा चलेगी, आपने ध्यान दिया होगा कि सर्वशुद्ध ज्ञान अभी ज्ञान शब्द के गुरुदेव ने दो अर्थ किए, एक चैतालीस ज्ञान स्वभाव और दूसरे उससे प्रकट हुई परिपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान पर, वो भी जो केवल ज्ञान में भी न कर्तृत्व का विकल्प है, न कर्तृत्व की चाह है, सहज परिणमन है, जैसा ज्ञान स्वभाव है वैसे ही केवल ज्ञान में प्रकट हो गया, तुम्हारा चित्त प्रकाश कैवल्य, केवल ज्ञान जो है शुद्ध चैतन्य के प्रकाश के अलावा और क्या है, आपको कहे तुम ज्ञायक लोकालोक, ये तो पहचान के लिए कहने की भाषा है कि केवल ज्ञान में लोकालोक झलकता है, ये तो एक कथन की शैली मात्र है, वास्तव में तो केवल ज्ञान आपके चैतन्य का ही प्रकार है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वास्तव में देखा जाए तो गुरुदेव के तत्व ज्ञान जो गुरुदेव की सीधी सादी गुजराती भाषा शैली और साहित्य की लटक झटक से बिल्कुल रहित समझने आया ना, उसको एक उच्च स्तरीय पैकिंग में प्रस्तुत करना, साहित्य बना देना, साहित्य की निधि बना देना, भाषा से, शैली से, सूक्ष्म विवेचन से ये महान काम सहज ही बाबू जी से बाणी और लेखनी से हो गया। उन्हें प्लानिंग नहीं की कुछ भी, उन्हें सोचा नहीं कि मुझे ये काम करना है, उनके स्वभाव नहीं था। संयोग से वो साहित्य रत्न थे, एने साहित्य रत्न उनकी शिक्षा का स्तर था, तो उसका उन्होंने और जयशंकर प्रसाद का उनकी लेखनी पर बहुत प्रभाव दिखाई पड़ता है। प्रभु बीती विभावरी आज हुआ अनुदय शीतल छाऊ, झूमते शांति लता के कुंज चले प्रभु अब अपने उस गाँव। ये प्रसाद की छाया है, अब आप लोग नहीं जानते होंगे हिंदी साहित्य में जो अभी 100 वर्ष पहले का जो हिंदी साहित्य जगत था उसमें प्रसाद पंत निराला महादेवी वर्मा ये छायावादी कवि जो चार थे ये बहुत प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के वर्तमान के सूर तुलसी जैसे मान्य स्थापित साहित्यकार। फिर बाद में नरसिंह चंद्रगुप्त हुए, रामनारी सिंह मिलकर हुए, इसका इतिहास बड़ा अलग टाइप का है। ये मुझे तो क्योंकि मैं कॉमर्स में पढ़ा था जब कॉलेज में, तो फिर जब जयपुर गया तो वहाँ थोड़ा हिंदी साहित्य से परिचय शास्त्री में तब मुझे पता चला यार इसमें भी आप जानते साहित्य के आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है। क्या बोलते ब्रह्मानंद सहोदर, ब्रह्मानंद नहीं सहोदर माने क्या होता है भाई ऐसा वो विषय अलग है, लेकिन सहज ही उनकी उनकी बोली ही ऐसी थी। वो जो भाषा लौकिक भाषा बोलते थे उसमें भी अच्छे ऊंचे शब्दों का प्रयोग करते बाबू जी, वो भी नकली नहीं करते थे, उनका स्तर ही टाइप का था, सोच ही ऐसी थी। तो मुझे तो गुरुदेव की याद इसलिए आई कि गुरुदेव ने दो अर्थ किए। तो दूसरा पॉइंट पर को करे न भोगवे, तो गुरुदेव ने पर में परद्रव्य से लेकर शरीर आदि से लेकर रागादि और परभाव और पर्याय यहाँ तक ले लिया। पर को करे न भोग, तो जब मैं ज्ञान हूँ तो फिर वो पर्याय भी पर ही हो गई ना, गजब बात। अपने को मिटाना और ध्रुव को अपने रूप अनुभव कर लेना, देखो एक मार्मिक बात है कि विषय भोग में भी यही प्रक्रिया होती, ये कोई नई बात नहीं है रजनी भाई। जिसे गुलाब जामुन प्रिय है, जब वो गुलाब जामुन का स्वाद लेता है तो उपयोग तो गुलाब जामुन के सन्मुख होता है, यह अनुभूति में मैं गुलाब जामुन खा रहा हूँ, मैं उसका आनंद ले रहा हूँ, ऐसा विकल्प खड़ा होता है जो ये तो कल्पना है। तो कल्पना लोक में मानो वो उससे तन्मय हो गया, तन्मयता के बिना भोग संभव नहीं है, पंचेंद्रीय विषयों का भी समझ में आया है। आप नेट देख रहे हैं वो भी तो इंद्रिय का विषय है, तो टीवी पर कोई दूसरा दृश्य देख रहे हैं और मोबाइल की घंटी बजे या कोई मेहमान आ जाए तन्मयता भंग हो जाती है तो कैसा लगता है, समझ में आया। तो तन्मयता भंग होने से वो विषय के आनंद की धारा टूट जाती, तो पर विषयों का ये हाल है। जबकि जीव पर को भोगता नहीं है, भोगने की कल्पना मात्र खड़ी होती है, और यहाँ कल्पना नहीं है, यहाँ तो वो बात सापेक्षित सत्य है। मैं ध्रुव हूँ ये सैद्धांतिक दृष्टि से देख, एक बार सही घटना में बताऊँ, पहली बार जिस गाँव में गया था दस लक्षण है सन 71 की बात, जोधपुर के पास नहीं है थोड़ा गांव है, वहाँ जो जिनके घर में ठहरा था वहाँ मैंने उनको ये बताया था, तो उन्होंने सुन के और सीख करके गया था कि पर्याय अपने को द्रव्य मानती है, द्रव्य रूप अनुभव करती है, वो बड़े इससे विचलित हो गए। ये मिथ्या ज्ञान नहीं हुआ, ये गलत नहीं है, ये पर्याय उसकी ड्यूटी तो यही जैसा है वैसा माने, तो पर्याय अपने क्षणिक हूँ ऐसा माने, और द्रव्य त्रिकाली जो है वो ध्रुव है ऐसा माने, मैं द्रव्य नहीं हूँ मैं पर्याय हूँ जो है वैसा माने ना, समझ में आया। तो अपने को द्रव्य मानना ये मिथ्यात नहीं है क्या? द्रव्य आप लोग तो इसको सम्मिलित कहते, मैं द्रव्य हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, पूछो पर्याय देखो, पर्याय कुछ भी मानती है, हो गई ज्ञायक, हो गई द्रव्य, हो गई टिक गई, दूसरे समय भी टिक गई है, एक समय में मरने वाला है वो कहता है मैं तो अमर तत्व हूँ। ये मिथ्या कल्पना इसे क्यों न कहा जाए, ऐसा बहुत चर्चा हुई थी 1971 की बात है, 43 वर्ष पहले की बात है। तो मैंने उनको वो भीष्म पितामह वगैरह के जो महाभारत के उदाहरण है और ये सब और दो उदाहरण देकर समझाया, ऐसा लोक में भी ऐसा होता है, कोई कन्या अगर किसी राजा का वरण करे, गरीब की कन्या, तो ये कही कि मैं तो आपकी दासी हूँ, मैं तो आपकी दासी होने लायक भी नहीं हूँ, ये तो आपकी महान कृपा है जो आपने मुझे इतना ऊंचा स्थान दिया है। तो वो दासी होने लायक भी नहीं है, पत्नी की तो बात छोड़, अगर उसने वरण करना किसे कहते, अगर उसने वरण किया है तो इसका अर्थ है मैं और तुमका भेद मिट गया, कोई वरण होता तो ये अनुभूति की कला है, हैं? तो गुरुदेव ने पर से लेकर के पर्याय तक सबको इस पंक्ति में ले लिया, पर तू करे न भोग वे जाने जति तसु नाम, ऐसे व्याय स्वभाव को जानने के लिए ये अधिकार प्रकट हुआ। प्रथम टीकाकार आचार्य देव कहते हैं अब सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है, मोक्ष तत्व के स्वांग से निकल जाने के बाद सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है, रंग भूमि में जीव जीव कर्ता कर्म पुण्य पाप आक्रव संवर निंद्रा बंध और मोक्ष ये आठ स्वांग आए, देखना ये बिल्कुल नाटक की भाषा है, उनका नृत्य हुआ, किसे हुआ उनका नृत्य, कैसे देखा अपने उनका, जो उनका वर्णन किया ना आचार्य ने वही उसका नृत्य है। आश्रव का वर्णन किया कि जो पूर्व कर्म का उदय है वो ही द्रव्य आश्रव है, वो आगामी कर्मों के आने का कारण है, वो तो बीच में राग आ जाता है इसके कारण उसमें निमित्त निमित्त का निमित्त तना प्रकट हो जाता है, ये आश्रव का नृत्य है। ऐसे मोक्ष का नृत्य अपन देख रहे हैं मोक्ष अधिकार में, और वे अपना अपना स्वरूप बताकर निकल गए, ये निकल गए और आगे वाली भाषा ये सोगानी की ये शब्दों में बोले तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली ढंग से आती है, कौन सी है चेतन भाई, परिणाम परिणाम गया, मैं यूं का यूं रह गया, आश्रव आया और गया, संबर आया और गया, अरे मोक्ष आया और गया, गया माने अब फिर संसार आ गया, गया माने वो पर्याय चली गई, दूसरा आया तो तीसरा आया, तो ऐसे नए नए आश्वांग आते रहे मोक्ष के, ये मैं तो ये ज्ञान मात्र, इस तरह देखिए इसके जीव जो है जीव जीव अधिकार में पूर्व रंग में डाले गए, कौन सा हुई गलत है नौ तत्व गतत्व थी यदि तत्व न मंचती, उसका यहाँ विकास किया है, अपना समय हो गया है, कल्पन सर जब मिलेंगे तो पुनः प्रारंभ करेंगे, ये कलकार भावार्थ वगैरह पढ़ के विषय आगे बढ़ेगा, अभी समय हो गया इसलिए यही विराम देंगे। जिनवाणी स्तुति कर ले फिर बैठेंगे नहीं इधर, हाँ जिनवाणी स्तुति करते हैं फिर सब बैठेंगे इधर, माहौल दूसरा चेंज करना है।